अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से प्रोग्राम जहां रंग में मैं हूं शहराज नफीस। प्रोड्यूसर हैं असफर इमाम और इंजीनियर नुशवान काली। पाकिस्तान और भारत में तमाम सुनने वालों को जहां रंग की टीम की जानिब से यौम आज़ादी मुबारक। और सामीन, जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान को वजूद में आए हुए आज ठीक 72 बरस जो हैं वो हो चुके हैं। पाकिस्तान के इस 72 साल सफ़र पर एक नज़र हम डालेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। आगे चलकर बात करेंगे कि यहाँ अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी इस दिन को किस तरह मनाती है, और आखिर में अपने माहिरीन से तज़िया लेंगे पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के ख़िताब का, जो आज उन्होंने पाकिस्तान के यौम आज़ादी के मौके पर पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की कानून साज असम्बली के खसूसी इजलास से किया। उन्होंने दो अहम बातें की हैं। पहले ये कि भारत जो है उनके बकौल पाकिस्तानी कश्मीर में कार्रवाई का मंसूबा रखता है, और ये कि पाकिस्तान ईंट का जवाब पत्थर से देगा। और साथ ही सामीन, आपने ख़बरों में सुना होगा कि पाकिस्तान ने भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की आइनी हैसियत तब्दील करने की भारतीय इकदामात हैं उस पर अक्वामी मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का बाज़ाब्ता मुतालबा कर दिया है। बाज़ाब्ता दरख्वास्त जो है वो दी गई है पाकिस्तान की जानिब से, और हम ये इस पर बात करेंगे कि इस आलमी फोरम पर इस इजलास से क्या तवक्कुआत रखी जा सकती हैं, किन चैलेंजेस का सामना हो सकता है, और क्या पाकिस्तान को इस फोरम पर उनके मौक़िफ़ को कितनी हिमायत जो है वो हासिल होगी, इस पर बात होगी। हमारा टोल फ्री नंबर 0800 777 789 पे आप कॉल करके हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। पहले सेगमेंट के लिए हमने आज मधु किया है डॉक्टर फैज़ानुल हक को, एक तारीख दान हैं US बेस्ड, और कायद आज़म यूनिवर्सिटी पाकिस्तान से एक और हिस्टोरियन डॉक्टर उमर अब्बासी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। और यहाँ अमेरिका से एक कॉलमिस्ट राइटर और मारूफ तज़ियाकार डॉक्टर मोहम्मद तकी साहब भी हमारे साथ लाइन पे हैं। तीनों मेहमानों को खुश आमदीद। और डॉक्टर फैज़ानुल हक साहब, आपसे हम आगाज़ करना चाहेंगे, ये बताइएगा कि ये जो 72 साल सफ़र है पाकिस्तान का, इसको आप किस तरह देखते हैं?
ठीक, सबसे पहले सुनने वालों को बहुत सलाम दुआ और ख्याल, अल्लाह ताला उनको अपनी अमान में रखे, और सबको 14 अगस्त बहुत मुबारक हो।
जी,
वो एक तहरीक का नाम है, और उस तहरीक की वजह से बहुत से लोग जो हैं वो इससे वाबस्ता रहते हैं, और अमेरिका में भी और मुल्कों की तरह पाकिस्तान का जो यौम आज़ादी है वो बहुत शोरों शोर से मनाया जाता है। रैली हमारे यहाँ का तो शहर है बफलो, लेकिन यहाँ पर भी आज जश्न आज़ादी है।
जी,
एक लोकल स्कूल में बच्चे इकट्ठे हों।
डॉक्टर फैज़ान साहब, इस पे हम आगे चल के बात करेंगे, लेकिन जो मैंने बुनियादी क्वेश्चन आपसे किया वो ये कि 72 बरस हो गए हैं आज पाकिस्तान को वजूद में आए हुए, आज तक पाकिस्तान का जो सफ़र है इसको आप किस तरह देखते हैं? पाकिस्तान ने इन सालों में क्या पाया है और क्या खोया है?
जी, उसमें मैं ये कहूँगा कि इंग्लिश में है कि नॉट अ डल मोमेंट। पूरी तारीख में कोई ऐसा मौका नहीं आया कि जब तक जो है पाकिस्तान को चैलेंजेस का सामना ना रहा हो, या पाकिस्तान ने अपनी बका की जो जद्दोजहद है उसको बरकरार ना रखा हो। तो 1948 जनवरी 15 1948 को लाइफ मैगजीन ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कवर पेज पे एक मैगजीन निकाला था, जिसकी कॉपी मेरे पास एक मौजूद है। तो उसमें जो आर्टिकल है वो शुरू होता है, उसका टाइटल है नेशन ऑफ पाकिस्तान स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव। और ये जो स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव है वो आज तक वैसे का वैसा ही चस्पा है पाकिस्तान की तारीख के साथ, लेकिन अब पाकिस्तान में वो खुद एतमादी नजर आती है कि हम यहाँ मौजूद हैं, हमारा एक तारीखी साज किरदार है, और हम यहाँ पर अपना किरदार अदा करने के लिए हैसियत एक कौम मौजूद हैं। और ये खुद एतमादी हम देखते हैं कि पिछले 30-40 सालों में डेवलप हुई है, और इसकी बहुत बड़ी वजह वो ये है कि बहुत से लोग ये नहीं जानते कि पाकिस्तान का जो इलाका है वो सदियों से कहलाता आया है वैली ऑफ इंडस या इंडस वैली। और ऐसे लोगों की एक खास तहजीब है, एक खास तमद्दुन है, एक खास किरदार है और एक खास रवायात है और उसके साथ एक खास एटीट्यूड है, एक खास तरीका कार है जिंदगी गुजारने का और जिंदगी के बारे में सोचने का। और ये वो जो है उसमें ये कि लोग बहुत हाई रिस्क टेकर्स हैं, रिस्क बहुत ज्यादा लेते हैं, बहुत बहादुर होते हैं, कबीले और अपने खानदान के साथ बहुत लॉयल होते हैं। तो ये वो तमाम चीजें जो हैं, और ये कि बहुत आसानी से हार नहीं मानते, डिफायंस करते हैं, यानी कि अगर उनसे लॉ कोई जुल्म करे या उनके ऊपर इनजस्टिस हो तो ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं करते, रिवोल्ट कर जाते हैं। ये वो और ये करेक्टरिस्टिक अगर पाकिस्तान की आप तारीख देखें तो उसमें बहुत नुमायाँ नजर आती है। बल्कि मुझे याद है कि प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने एक दफा कहा था कि पाकिस्तान बहुत मुश्किल मुल्क है हुकूमत करने के लिए, क्योंकि वहां पर हर कोई जो है वो हुक्मरानी रखता है और ये अच्छी कौम की अलामत है और ये एक किदा कौम की अलामत है। और इस लिहाज से देखा जाए अगरचे कि आधा मुल्क गवाया खत्म हो गया, यानी कि वो बांग्लादेश बन गया, लेकिन उससे पाकिस्तान ने सीखा है और एक नई ताकत बनकर उभरा है। और उसका और मैं मुबारकबाद देता हूँ पाकिस्तानी कौम को और उनके तमाम उन लोगों ने जिन्होंने इसमें अपनी अपनी खदमात की हैं, चाहे वो सियासी लीडर हों या हमारे जो पाकिस्तान की फौज के लीडर हों या तमाम लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, स्कूल टीचर्स और स्टूडेंट्स और ख्वातीन, हर एक ने अपने अपने शोबे में जो है कमाल हासिल किया है और आज पाकिस्तान का नाम हर जगह रोशन है और पाकिस्तान हर मैदान में मुकाबला कर रहा है।
जी आप प्रोफेसर साहब हमारे साथ रहिए, आपकी जानिब हम जाना चाहेंगे, इस वक्त पाकिस्तान जाना चाहेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर उमर अब्बासी साहब। डॉक्टर अब्बासी साहब आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद। और आप किस तरह देखते हैं आज 72 बरस बाद पाकिस्तान जिस जगह पर खड़ा है तो उसे यहीं पे होना चाहिए था?
जी पहले तो बहुत शुक्रिया, मुतारफ में आपसे थोड़ी सी गलती होगी, मैं कॉन्सर्ट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में प्रोफेसर हूँ पॉलिटिक्स इंटरनेशनल रिलेशंस का।
जी
जहाँ तक ये डॉक्टर, पहले मैं अपनी बात डॉक्टर साहब की बात से दोहराऊंगा, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि हमने तारीख से बिल्कुल भी नहीं सीखा। डॉक्टर साहब ये जो कह रहे थे कि जी हमने बांग्लादेश से सीख लिया, मुझे तो बिल्कुल नहीं नजर आता कि हमने बांग्लादेश से सीखा है। अगर हम तारीख से थोड़ा सा भी सीखते तो अभी चूंकि वो इवेंट बहुत रीसेंट है आर्टिकल 370 को लेके, तो हमें आसाम की इंडियन एग्जांपल से सीखना चाहिए था कि आसाम को उन्होंने कितना इजीली मर्ज किया, तो उस पर हम आज तक किसी गलत फहमी में इल्यूजन में रहे कि हमारा जो कश्मीर के ऊपर स्टैंड है वो इंडिया को जो उसके अंदर लॉन्ग रन स्ट्रैटेजी होती है 20 साल की 25 साल की स्ट्रैटेजी, उस स्ट्रैटेजी में हम उसे कहीं कंट्रोल कर पाएंगे। तो आसाम का ही रेप्लिका हुआ आर्टिकल 370 का जो रिवोक किया उन्होंने, तो हमने तारीख से तो सीखा नहीं। तो दूसरी बात आप ये कह रहे थे कि जी देखिए हमें इल्यूजन से निकलने की जरूरत है, जो हम अपने आप को बहुत सारी ऐसी इल्यूजन में हमने रखा हुआ है कि पाकिस्तान बहुत अजीम नेशन है और इंडस वैली सिविलाइजेशन है और उसके लोगों के खदोखाल और मिजाज मुख्तलिफ हैं। कतन मुख्तलिफ नहीं है, पाकिस्तान एक बहुत सारे मुल्कों में से एक मुल्क है जो वजूद में आ गया था जैसे तैसे करके, और यहाँ के लोगों की जो अखलाकी सूरत हाल है या जो चीजों को समझने की है, यहाँ के लोगों में जब मैं बात करता हूँ तो उसमें क्यादत बशमूल अस्करी और सियासी क्यादत की और मजहबी क्यादत की और अवाम, यानी क्यादत में तमाम तर्ज की क्यादत और अवाम में तमाम तर्ज की अवाम, भले वो सिंध के हों, बलोचिस्तान के हों, कश्मीर के हों, केपीके के हों, आज तक हमने इवॉल्व किया ही नहीं है, किसी सूरत में इवॉल्व नहीं किया। पाकिस्तान ने ना आईनी एवोल्यूशन किया है, ना कॉन्स्टिट्यूशनल इर्तका यानी आईनी इर्तका हुआ, ना ही हमने मुआशरती इर्तका हुआ हमारा। आपको लगेगा कि जी ये मैं पेसिमिस्टिक हूँ और जिस चीज के ऊपर मैं तनकीदी निगाह क्यों रखता हूँ, लेकिन हकीकत तो ये मोहतरमा कि जब तक हम चीजों को क्रिटिकली नहीं देखेंगे, तनकीदी निगाह से नहीं देखेंगे और हम अपने आप को इल्यूजन्स में और इस तरह के बहुत सारी चीजों में रखेंगे, तो उस वक्त तक हमें कोई रस्ते का तयन हमारा नहीं होगा। और पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि कौमी अहमियत के जितने جتنے موضوعات ہیں تمام تر جو چیزیں جو نیشنل انٹرسٹ سے ریلیٹڈ ہیں وہ ہمیشہ کنٹروورشل رہی ہیں, اس پہ ہم کبھی ایک پیج پہ آ ہی نہیں سکے, بھلے وہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ہو, بھلے وہ ہمارا سسٹم آف گورنمنٹ ہو, بھلے ہمارا سسٹم آف اکانومی ہو, سسٹم آف ایجوکیشن ہو, بھلے ایون دا ایشو آف کشمیر ہو, یا ہمارے ریلیشن شپ ان دا ریجن ہو, یا ہماری گلوبل اسٹینڈنگ ہو, ہم کسی بھی چیز کے اوپر آج تک بحیثیت قوم ایک نقطے پر نظر نہیں آتے. اور اگر آپ اس کو کہیں گے کہ یہ جمہوری حسن ہے, یہ جمہوری حسن میں اختلاف ہوتے ہیں مگر اس میں ایک سمت کا تعین ہوتا ہے, یہ جمہوری حسن نہیں ہے, یہ صرف اور صرف ہماری نااہلی ہے. اور پاکستان 70 سال میں جو پاکستان بن گیا, اگر آپ مجھے آئی ڈونٹ نو آپ مجھ سے اس کے اوپر بات کرنا چاہیں گی کہ پری پارٹیشن اور ڈیورنگ پارٹیشن کے اوپر ہم تھوڑی سی بات کریں, تو پاکستان بن تو گیا تھا جیسے تیسے کر کے, لیکن اس کو سمت کا ہم تعین نہیں کیا. یعنی پاکستان میں افراد تو ہم نے آدھے بلوچی پکڑ لیے, آدھے کشمیری پکڑ لیے, آدھے پنجابی پکڑ لیے, آدھے پٹھان پکڑ لیے. آپ ہمارے ڈیموگرافک ریالٹیز کو دیکھیں تو ہم نے تمام ریجن کے ملکوں میں سے کچھ لوگ پکڑ کے آدھے ادھر اور آدھے ادھر کے حساب سے ہم نے ایک جو ہم نے تو نہیں معذرت کے ساتھ برطانوی سامراج نے اس کو ایک باؤنڈری اسکیچ کر دی اور اس کو ہم نے ایک ملک بنا دیا. تو وہ بذات خود ایک چیز ہے جس کے اوپر ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے. تاریخ کے بہت سارے ایسے پہلو ہیں کہ جس کے اوپر ہم نے بات نہیں کی, اور اس کی وجوہات بہت ساری ہیں. ہمارے اوپر لیبل لگ جاتے ہیں, ہمیں جو ہے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. تو جب تک ان چیز پینڈورا باکس کو جب تک کھولیں گے نہیں, اور جب اس چیز کو آپ سامنے لے کے آئیں گے نہیں کہ پاکستان ایک ملک ہے اور اس کے اندر مختلف خطوں سے جو ہم نے ضم کر کے افراد کا مجموعہ اکٹھا کیا, اس کو ہمیں بصورت قوم بحیثیت قوم آگے لے کے جانے کی ضرورت تھی. تو انفارچونیٹلی وہ جیوگرافیکل باؤنڈریز تو سکیچ ہو گئیں, لیکن نہ ہماری قیادت میں کبھی یہ ترجیح رہی کہ ہم نے ایک قوم کی تشکیل کرنی ہے, اور نہ ہی وہ آج تک کر پائے. تو ہم بہت سارے افراد کا مجموعہ ایک جغرافی حد کے اندر اس وقت محسوس تو ضرور ہیں, مگر نہ ہم قوم ہیں اور نہ ہی پاکستان کو اگر ملک سمجھا جائے تو وہ ملکوں کی صف میں اس وقت بین الاقوامی دنیا میں ایک ملک کی حیثیت سے اگر ڈپلومیٹک فرنٹ میں بھی دیکھیں, جہاں سے بھی دیکھیں, تو ہم سے دنیا مجبوری کی صورت میں تعلقات تو قائم کرتی ہے, لیکن ایسے نہیں کہ ہم سے ایک ریاست کے طور پہ اور ایک قوم کے طور پہ تعلق قائم کیا جائے.
اوکے ڈاکٹر محمد تقی صاحب, آپ نے ڈاکٹر فیضان الحق صاحب کو بھی سنا اور آپ نے ڈاکٹر عمر عباسی صاحب کو بھی سنا. آپ ڈاکٹر عمر عباسی جو ہیں وہ کچھ زیادہ پر امید نظر نہیں آتے جو کچھ پاکستان نے 72 ایئرز میں اچیو کیا ہے, جبکہ ڈاکٹر فیضان الحق صاحب ہی از کائنڈ آف یو نو پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ جو کچھ پاکستان نے حصول کیا ہے اس عرصے میں. آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ایسی چیزیں ہیں جو ان 72 ایئرز میں پاکستانی اسٹیٹ نہ کر پائی, اور اس کی وجوہات آپ کیا دیکھتے ہیں؟
جی جو پہلے ڈاکٹر صاحب فیضان نے فرمایا انڈسٹریلی سولائزیشن وغیرہ وغیرہ, تو معذرت کے ساتھ وہ جو انہوں نے کہا, اگر مورخین ایسی بات کریں گے تو پھر دنیا کہاں جائے گی. انہوں نے جو بھی بات کی اس کے اندر تو رتی بھر بھی اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے. جیسے کہ بعد میں دوسرے پروفیسر صاحب نے وضاحت بھی کی کہ پاکستان جو ہے وہ مختلف ایتھنسٹیز اور اقوام سے مل کر بنا ہے. انڈس ویلی سولائزیشن کا جو نقشہ انہوں نے کھینچا وہ تو بالکل ایک ہوائی ایک خیالی بات انہوں نے کی ہے کہ انہوں نے اٹھ اٹھ کے لوگوں کو جو کبھی کسی سے اوپریس نہیں ہوئے. مجھے تو معلوم نہیں کہ سندھ اور پنجاب کے لوگ ہیں انہوں نے کبھی کوئی بہت بڑی ایسی آزادی کی تحریک چلائی ہو. 1946 میں جس وقت پاکستان بن رہا تھا دونوں جگہ, ایک جگہ 1946 میں یونین منسٹری تھی جس کو جوڑ توڑ کر کے جو ہے وہ مسلم لیگ نے صاف کیا, اور وہاں پر مسلم لیگ کی اپنی منسٹری تھی, اور جتنے سر اور خان بہادر وہاں پر تھے وہ تو شاید ہمارے پاس بھی نہیں ہوں گے اس طرف. دوسرا یہ کہ دریائے سندھ کے مغربی کنارے کی طرف رہنے والے جو ہیں بلوچ پشتون, ان کی سولائزیشن بالکل مختلف ہے جس کو وہ انڈس ویلی. تو یہ پاکستان کے اندر ایک ریویژنسٹ تاریخ بیان کرنے کا ایک رواج ہے. ہمارے محترم برسر اعتزاز احسن صاحب نے کتاب بھی انڈس ساگا اس عنوان سے لکھی ہے, یعنی اتنی ریویژنسٹ تاریخ تو شاید آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گی. یہ جس جغرافیائی ارتکاز کا حصہ تھے, جو اس وقت سیاسی سلطنتیں اور اس کے بعد کی حکومتیں جو آتی رہیں, یہ بھی اسی کا حصہ رہے. میں خود پشاور ویلی سویلائزیشن سے تعلق رکھتا ہوں. ہمارا اور انڈس ویلی کا کوئی ایک دوسرے سے کوئی چیز کامن نہیں ہے. اور آپ کی بات کہ ہم نے کیا حاصل کیا, تو ہمارے محترم مسلم لیگی لیڈر کے نام شاید لوگ جانتے ہوں یا نہ, سردار عبدالرب نشتر جو پشاور سے ان کا تعلق تھا, تھے وہ بلوچستان کے جو پشتون علاقے ہیں وہاں کے تھے وہ کاٹر. تو وہ آخر میں ایک شعر بہت پڑھا کرتے تھے کہ نارنگی سیاست دوراں تو دیکھیے, نارنگی سیاست دوراں تو دیکھیے, منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے. اور یہ وہ شخص تھے کہ جنہوں نے اپنی زندگی جو ہے تاریخ پاکستان کو دی, اور مسلم لیگ کے وہ عہدیدار بھی رہے, اور بعد میں وہ اس پر مجبور ہوئے کہ وہ اپوزیشن لیڈر بن گئے مسلم لیگ, جس وقت غلام محمد گورنر جنرل اور ان لوگوں نے خواجہ ناظم الدین کی حکومت آئی. تو پہلے دن سے جو مسائل پاکستان میں پیدا ہوئے اور نارنگی سیاست کے دوران یہ ہے کہ پاکستان سیاسی لوگوں نے بنایا, پاکستان کی دیکھ ریکھ کرنا ان کا ذمہ ہونا چاہیے تھا. پاکستان کی افواج جو اب اپنے آپ کو پاکستان کی نظریے کا بھی اور پتہ نہیں جو فزیکل سرحدات ہیں اور جو خیالی اور آئیڈیولوجیکل سرحدات ہیں ان کا بھی وہ اپنے آپ کو محافظ کہتی ہیں, وہ تو اس وقت انگریز کی کے لیے کام کر رہے تھے. یعنی جو پاکستان کے تین چار فوجی حکمران گزرے ہیں ان کے والدین بھی جو ہیں وہ انگریزوں کے برٹش آرمی کے ملازمین تھے, چند ایک جو ہیں وہ برٹش پولیس کے ملازمین تھے. تو یہ وہ لوگ تھے کہ جو ان کا پاکستان کی تحریک سے تو کوئی تعلق نہیں تھا, نہ کانگریس کے ساتھ نہ مسلم لیگ کے ساتھ, حکومتی قسم کے لوگ تھے. بعد میں ان کو مل گئی, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ 72 سال تک قوم سے اس قدر جھوٹ بولا گیا, اور جس چیز کے اوپر پالیسی جو چلائی گئی وہ یہ پچھلے ہفتے میں وہ آ کے ہمارے منہ پر لگ گئی. جو کشمیر میں ہوا ہے اور اس کے بعد جس طریقے سے پاکستان کی افواج اور ان کی انسٹال کی ہوئی ایک نام نہاد سیاسی حکومت جس طریقے سے بیہیو کر رہی ہے, تو اس ساری پالیسی کا جنازہ نکل گیا, لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ انہوں نے 72 سال سے قوم کو کسی اور لائن میں لگایا ہوا. تو پہلے دن سے جو اکتوبر 47 میں جو فوج کشی اور لشکر کشی کشمیر میں کی گئی, اس کے شخصانہ جو ہے وہ 72 سال کے بعد ہم بھگت رہے ہیں. دنیا نے اس وقت یہ سمجھایا کہ یہ کام آپ نہ کریں, پھر آپ کشمیریوں کی جو جنون تحریک ہے اس کو بھی برباد کر دیں گے. اس میں نسلوں کی نسلیں جو ہیں ہمارے بچے جھونک دیے انہوں نے. ایسے بھی جو کشمیر کے جو آزادی کے متوالے تھے, اس میں پشاور کے رہنے والے ایک مشہور کشمیری رہنما تھے مقبول بھٹ, ان کو بعد میں 1984 میں تہاڑ جیل میں پھانسی دے دی گئی. ان کو جو آزادی چاہتے تھے ان کو پاکستان کی جیلوں میں یہ رکھا گیا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ آبجیکٹیوٹی جو پیدا ہونی چاہیے تھی, انہوں نے کہا کہ ہم نے سیکھا ہے. ہم نے کیا خاص سیکھا ہے اگر ہم اب یہ بیٹھ کے بتا رہے ہیں کہ انڈس ویلی سویلائزیشن جو ہے وہ کوئی یونیک چیز تھی اور اس کا گنگا جمنی تہذیب سے کوئی تعلق نہیں تھا, یا یہ کہ پشاور ویلی سویلائزیشن اور انڈس ویلی جو ہے وہ کامن ہے, وہ کیسے ہیں؟ نہ ہم زبان ایک طرح کی بولتے ہیں, نہ ہمارا رکھ رکھاؤ وزرداری ہمارا اپنے طور طریقے ہیں, ان کے اپنے طور طریقے ہیں. اب آپ 40-50 سال 60-70 سال جو ہے وہ کسی کو ایک میلٹنگ پاٹ میں ڈال دیں تو ٹھیک ہے, کامنالٹیز پیدا ہو جاتی ہیں, لیکن آج کے دن تک جو, اور اگر ڈائیورسٹی کو نہ مانا جائے اور اس کو سیلیبریٹ نہ کیا جائے تو نقصان ہوتا ہے اس سے. اور پاکستان ایک فیڈریشن ہے, اس کو فیڈریشن کے طور پر چلائے, جس جگہ پر جو جو قومیں آباد ہیں ان کے جو وسائل ہیں ان کو اپنے وسائل پر قدرت دیں, لوگ خوش رہیں گے, پاکستان سے بھی خوش رہیں گے, پاکستان کی فوج سے بھی ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر وہ اتنی پری ایمیننٹ بن کے نہ رہے, ظاہر ہے دنیا کو فوجوں کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن ہم نے دیکھا کہ پاکستانی جو پیٹ کاٹ کے فوج کا پیٹ پالتے رہے اور ہر قسم کے کیل کانٹے سے ان کو لیس کیا, لیکن جب وقت آیا ہے تو ابھی آپ نے ان کو میرے خیال میں پچھلے ہفتے میں ان کے جو بڑے جو چیختے چنگھاڑتے ہیں سوشل میڈیا پہ ایک جرنیل صاحب
لیکن ڈاکٹر تقی صاحب, آپ جتنی بھی ناکامیاں آپ کی نظر میں ہیں پاکستان کی ایز اے اسٹیٹ کے طور پر اگر ہم دیکھیں, تو اس کا ذمہ دار آپ کی گفتگو سے لگ رہا ہے پاکستانی فوج کو ٹھہرا رہے ہیں, لیکن سیاستدان جو ہیں وہ کہاں تک آج کے جو حالات ہیں اس کے ذمہ دار ہیں؟ انہیں بھی تو کئی مواقع ملے ہیں, انہوں نے کیا کوئی طرز حکمرانی کی اچھی مثالیں قائم کی ہیں اور اداروں کو مضبوط کرنے کی طرف ان سیاسی جماعتوں نے, جب ان کی حکومت تھی, انہوں نے کہاں تک توجہ دی ہے؟
جی तो गुजारिश यह है कि हमारी फौज जो है, एक तो ये कि हमें वैसे में इतनी बड़ी फौज मिली कि जो आउट ऑफ प्रोपोर्शन थी मुल्क के वसाइल के साथ। हिंदुस्तान की फौज में एक और मामला वहाँ पे डाइवर्सिटी का था, और उसको पंडित नेहरू ने जो है वो 1946 में जब वो वजीर दिफा थे तो उन्होंने उसको हल करना शुरू किया। तो उन्होंने फौज के डेमोग्राफिक मेकअप चेंज करना शुरू किया। वो प्रोफेसर साहब ने कहा कि मार्शल रेसेस थी लाना था, ये अंग्रेज का एक कॉन्सेप्ट था कि पश्तून और राजपूत और मराठे जो हैं ये मार्शल रेसेज हैं, और पंजाब के कुछ इलाके जो हैं मार्शल रेसेज हैं, तो इनकी रिप्रेजेंटेशन फौज के अंदर बहुत ज़्यादा थी। पहले तो ये कि हमें मिलिट्री हैवी पाकिस्तान मिला, फिर मिलिट्री के अंदर सर्टन इलाकों की रिप्रेजेंटेशन जो थी वो ओवर रिप्रेजेंटेड थी। हिंदुस्तान ने अपने डेमोग्राफिक मेकअप चेंज किया, हमने नहीं किया। उसके साथ साना एक तो ये हुआ कि वो पावर कॉन्सेंट्रेट होता रहा, दूसरा ये कि तो 1958 के अंदर अयूब खान वजीर दिफा बन गया, उसके बाद माशा लग गया। और 10 साल तक जिसको ये डेकेड ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं वो बेबुनियादी तौर पर डेकेड ऑफ डिके था। उसको यानी इतना इंहिताद उसमें सियासत का और मुल्क का हुआ कि जिसका शाखसाना जो है वो 1971 में आपने बांग्लादेश की सूरत में देखा। एक तो सियासतदानों की दो किस्में, एक तो वो जो कि फौज के कोलैबोरेटर रहे हैं, अयूब खान के साथ भी थे, उसने अपनी डीडी डेमोक्रेसी बनाई थी, बेसिक डेमोक्रेसी, और उसके साथ बहुत सारे सियासतदान थे, कुछ जो थे जो उनकी अपोजिशन में रहे। उन अपोजिशन वालों को तो पाकिस्तान में जैसे बादशाह खान ने कुल मिला के जिंदगी में 33 साल जेल गुजारी, और उसमें से बहुत सारा वक्त वो पाकिस्तान की जेलों में रहे। पहले दिन हमारे सियासतदानों में से गनी खान जो है वो हैदराबाद की जेल में थे। इसी तरह 70 के अशरे में वली खान 4 साल जेल में रहे। तो ये वो सियासतदान है कि जो हक की बात कहते थे, और आजकल ये पिछले हफ्ते के वाकयात ने साबित किया कि ये लोग सब ठीक कहते थे। और इसी तरह
अब आगे के लिए क्या स्ट्रेटेजी जो है होनी चाहिए उस पर भी हम आपसे बात करना चाहेंगे। डॉक्टर तकी साहब, डॉक्टर अब्बास साहब हमारे साथ रहे, डॉक्टर फैजानुल हक साहब काफ़ी आप पे नुक्ताचीनी हुई है, उसका भी अगर आप जवाब देना चाहें, और साथ अगर एक आम पाकिस्तानी की आज हम बात करें तो क्या वजह है कि 72 ईयर्स बाद भी आज वो एक मौशी तौर पर खुद मुख्तार, एक तरक्की याफ्ता, बेहतर और एक पुरअमन पाकिस्तान की दुआ जो है वो मांगते हुए दिखाई देता है, क्या वजह है इसकी, का फ्लॉस कहाँ पर है? प्रोफेसर फैजानुल हक साहब
जी, जी आपको आवाज आ रही है?
जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज।
अच्छा, सबसे पहले अब मुझे उम्मीद है कि आप मुझे उतना ही वक्त देंगी जितना हमारे दोस्तों को दिया है,
बिल्कुल,
ताकि मैं इसको क्लैरिफाई कर सकूं। पहली बात तो ये है कि मार्शल रेसेस की ना मैंने बात की है ना मैंने उसका लफ्ज इस्तेमाल किया है, विच इज नॉट राइट। पहली बात जो है वो ये है कि हमें सिर्फ 72 साल हुए हैं कौम बने हुए। जब कौमें बनती हैं, टूटती हैं, बिखरती हैं, इकट्ठी होती हैं, अगर आप अमेरिका की मिसाल ले लें तो अमेरिका जो है 1776 में आज़ाद हुआ, 1787 में इसके कॉन्स्टिट्यूशन को रेटिफाई किया गया, उनको 100 साल गुजर गए, 1865 में उनको अपने साथ एक जंग करनी पड़ी जिसको सिविल वॉर कहते हैं, ये समझने के लिए कि जो 2-3 लाइनें हैं कॉन्स्टिट्यूशन की उसका मतलब क्या है। उसके बाद 100 साल और गुजर गए, 1960 की दहाई आ गई तो उनको पता चला कि सिविल राइट्स क्या चीज होते हैं और स्लेवरी से कैसे हमने छुटकारा पाना है। और अभी तक, आज तक अमेरिका जो है वो रेसिज्म का मसला हल नहीं कर पाया। अगर कोई ये समझता है कि 72 साल की उम्र में और 72 साल में पाकिस्तान कौम तमाम उतार चढ़ाव अबूर करके एक ऐसे पिनिकल पे पहुंच जाएगी, मुकाम पर पहुंच जाएगी, तो वो मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन मुझे लगता है वो कि वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं। और जो और जो एक और जो बात है वो ये है कि जो नैरेटिव होता है वही हर चीज होता है, वही कौमें बनाता है और बिगाड़ता है। अब हम कहते हैं अमेरिका में कहते हैं कि जी अमेरिकन ड्रीम है, क्या है कि एक घर है वाइट पिकेटेड, उसकी साइड हैं, एक दो बच्चे हैं, एक कुत्ता है, उसको हम अमेरिकन ड्रीम का नाम दे दिया है। यहाँ तक कि इनकी ब्रांडिंग और इतनी जबरदस्त है कि एक बंदा नाइजेरिया में बैठा है वो कहता है आई हैव एन अमेरिकन ड्रीम, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। तो जब आप ब्रांड दे देते हैं अपनी नेशनैलिटी को या अपनी उसको तो वो बन जाता है।
लेकिन इस वक्त तो बात पाकिस्तान की हो रही है।
हाँ, लेकिन पाकिस्तान की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जो नैरेटिव पाकिस्तान को मिला है वो एक बहुत जबरदस्त नैरेटिव है, और उस नैरेटिव की एक बुनियाद है तारीखी और नजरियाती। जोग्राफियाई हदूद जो हैं वो सुकड़ भी जाती हैं और फैल भी जाती हैं, लेकिन जो कौमी हैं वो उस नजरिए और उस नैरेटिव पर जिंदा रहती हैं और उसके मुताबिक आगे बढ़ती हैं। एक और जो बात जो इंडस वैली मैन की जो मैं आपको बताता हूँ, यह है कि वो इंतहाई अनफॉरगिविंग होता है, वो वसीला होता है, वो गलतियां माफ नहीं करता, क्योंकि गलतियां माफ हो नहीं सकती क्योंकि उसने हम हैं डिफेंडर्स ऑफ सिविलाइजेशन, ये हमारा किरदार रहा है थ्रू आउट द हिस्ट्री, जो कि हम अब भी निभा रहे हैं। जब अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन आया तो उसके आगे उसको एक दीवार मिली, दैट वॉज द डिफेंडर्स ऑफ सिविलाइजेशन। आज जब हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग कर रहे हैं तो वी आर द डिफेंडर्स of civilization, whether it is Indian civilization or anything else, क्योंकि अगर पाकिस्तान नहीं है तो ये सब चीजें directly India में जाती हैं।
ठीक।
तो हम हमारी दहशतगर्दी की जंग सिर्फ हमारे लिए नहीं है बल्कि वो हिंदुस्तान की बका की भी जंग है। अब जो कश्मीर का इशू है वो ये नहीं है कि कश्मीर में किसके पास कितनी फौज है और किसने क्या किया, और फौज का भी मैं अभी आपको जवाब दे देता हूँ फौज वाली बात का। असल में मसला ये है कि जब ऐसे रीजन को डिस्टेबलाइज किया जाता है तो स्टेटस को चेंज होता है, स्टेटस को चेंज होता है तो रीजनल पावर जो बैलेंसेज है वो चेंज होता है, जब वो चेंज हो जाते हैं तो एक बहुत बड़े खतरे की घंटी बज जाती है क्योंकि वी आर लुकिंग एट अ न्यू ऑर्डर इन अ रीजन, और वो जो है दैट क्रिएट्स ए प्रॉब्लम, दैट क्रिएट अ ह्यूज रिस्क। और जहां तक फौज का ताल्लुक है तो अगर हम ये समझते हैं कि बीजेपी 2/3 मेजोरिटी लेकर अगर इंडियन पार्लियामेंट में आ जाती है और उसका इंडियन डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है तो आई डोंट बिलीव इट बिकॉज दैट इज नॉट ट्रू। इसलिए कि जो 9/11 के बाद खास तौर पे और उससे पहले अमूमी तौर पर अक्सर जो कंट्रीज हैं वो सिक्योरिटी सेंट्रिक हो चुके हैं। पाकिस्तान का अगर आपने मुकाबला करना है तो पाकिस्तान का आप इसराइल से मुकाबला कीजिए जहां पर हर एक बंदा जो है वो फौज में शामिल होता है। जो अगर क्योंकि हमारी जो इनसिक्योरिटीज हैं उसका अगर आपने मुकाबला करना है तो उसकी एक जो मिसाल है वो इसराइल इसलिए है कि वो भी 1948-49 में आया, हम 1947 में आए, हमें एक सुपर वार की सुपर पावर की बैकिंग नहीं मिली जैसी इसराइल को मिली, लेकिन वी हैव सर्वाइव्ड बाय इटसेल्फ।
ये बहुत अहम पॉइंट्स आपने उठाए हैं डॉक्टर। अमेरिका के सिस्टम का भी जिक्र किया तो डॉक्टर तकी भी अमेरिका में ही मुकीम है, उनसे मैं इस पे कमेंट जरूर करना चाहूंगी जो आपने गुफ्तगू की है। लेकिन डॉक्टर अब्बासी साहब आपकी जानिब पहले ये बताइएगा कि पाकिस्तान को एज ए स्टेट किन चीजों पे फोकस करना चाहिए आगे बढ़ने की जब हम बात करते हैं।
देखिए पहली बात ये है कि मैं डॉक्टर फैजान की बहुत सारी बातें उनसे भी बात करना चाहूंगा, लेकिन पहली बात ये है ना कि आपको
असल में ये एक घंटे का ये मौजू नहीं है, मेरे ख्याल में पूरा घंटा इस मौजू पे बात करनी चाहिए लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली सेगमेंट्स में हमारा प्रोग्राम होता है और इसका टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है, तो आप प्लीज अगर
ठीक है
जो मैंने क्वेश्चन किया है
क्विकली आपको बताता हूँ। जी जी, आपका जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में एक स्टेट ऑफ माइंड है जो आप कहते हैं ना पाकिस्तान को एज अ स्टेट क्या करना चाहिए।
राइट,
ये जो हमने बहुत ज्यादा स्टेट को एम्फेसाइज किया हुआ है, दुनिया की तारीख गवाह है। मैं अमेरिकन हिस्ट्री को मैंने बहुत कीनली पढ़ा और मैंने मैं इस पर बात करना चाह रहा हूँ लेकिन वक्त की किल्लत है। दुनिया की तारीख गवाह है कि जिस रियासत ने अपने अफराद को मरकजी मकाम दिया, यानी इंग्लिश में ये है कि द पीपल, देखें एंटार्क्टिक का कोई मुल्क तो नहीं है, यू नो आपको ज्योग्राफी नहीं चाहिए, यू डोंट नीड ज्योग्राफी, यू नीड पीपल। और जो आप कौम का लफ्ज करते हैं, पाकिस्तान बहसियत कौम तो तश्कील हो ही नहीं सकी। पाकिस्तान की कौम आज भी पंजाबी, पठान, सिंधी, बलोची, 5 मिनट बात करें उनकी आइडेंटिटी आपके सामने बहसियत पाकिस्तानी आती नहीं है, बजाते खुद कश्मीरियों की बहसियत पाकिस्तानी आती नहीं है। तो हमें स्टेट इज नथिंग विदाउट पीपल, रियासत का अफराद के अलावा कोई तारुफ है ही नहीं। हमारी तारीख गवाह है, आप देखें, वो आप कह रही थी कि आपका सवाल ये था कि सियासतदानों ने क्या कुछ किया, गनी खान को देख लें, जी एम सैयद को देख लें, फातिमा जिना को देखें, दे वर द ट्रू पॉलिटिशियंस। उनको आपके इदारों ने और बहुत सारे लोगों ने क्या किया उसके ऊपर डॉक्टर तकी विल एक्सप्लेन इन डिटेल, उनका परस्पेक्टिव बड़ा वैलिड है। लेकिन पाकिस्तान आज तक बहसियत कौम तश्कील हो ही नहीं पाया, और आज भी आप पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लें, कभी पाकिस्तानी अवाम आपकी हुकूमत का,
लेकिन चले अगर हम मानते हैं कि पाकिस्तान से कुछ गलतियां जो हुई हैं माजी में अभी तक वो कुछ करता रहा है, तो अब किस तरह उसको एक दुरुस्त पॉलिसी जो है वो क्या होनी चाहिए पाकिस्तान की, कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है।
जी
जी मैं आपको बता दूंगा, उस पर मेरा थीसिस है। थीसिस ये है कि हमें ग्रैंड नेशनल डिबेट करनी चाहिए, हमें मोहम्मद अली जना के ऊपर भी तनकीदी डिबेट करनी चाहिए, हमें अल्लामा इकबाल के 1937 के जो इलेक्शन के बाद जब इन्होंने जना को खत लिखे उसको भी तनकीदी निगाह से पढ़ने की जरूरत है कि उस पर उन्होंने कैसे कहा कि यूनियनिस्ट पार्टीज को जब उन्होंने पंजाब में विक्ट्री ली और मुस्लिम लीग नून का बुरा हाल हो गया तो उन्होंने कायदे आजम को क्या खत लिखे कि इनके साथ वादे करो और इन्हें वादे बेचो तो तब ये जमहूर तुम्हारे साथ इकट्ठा होगा। क्राउड पुलिंग, झूठे वादे, इन चीजों से निकल के हमें इस चीज पे आना है कि रियासत अवाम के सिवा कुछ भी नहीं है, अवाम की फला। और आप जो कह रहे थे कि जी हम सिविलाइजेशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और सिविलाइजेशन की कहां से प्रोटेक्शन हमने की है? कभी की नहीं है, हम तो सिविलाइजेशन को बर्बाद कर रहे हैं। हमने एक ऐसी हुकूमत को का साथ दिया कि जिसने बहुत सारे पुराने बुत गिरा दिए थे और हम उनके सबसे बड़े सपोर्टर थे। हम तो हमारा तो 70 साल हमने तमाम तर पुरानी सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय किया। एंटिस वाली सिविलाइजेशन को हम चैरिश करते हैं तो दो कौमी नजरिया तो उसका एंटीथीसिस है जिसकी वजह से आपका मुल्क वजूद में आया। पॉइंट ये है कि जैसे भी आ गया ये मुल्क वजूद में आ गया, अब इसका हल वाहिद इलाज ये है,
वही इलाज। हाँ जी, जो जी इलाज बताइए।
जो आपने सिक्योरिटाइजेशन की हुई है ना कि हम खा जाएंगे और हम मर जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। पाकिस्तान बनने के बाद भी 200 साल 300 साल को तो छोड़ें, सिंगापुर को देखें, मलेशिया को देखें, इन्होंने कौमों को आगे नहीं लेके आए। इनका बुनियादी तमाम तर हुकूमतों का जो बुनियाद था, मरकज और महवर था, वो उनके अफराद की फलाह बहबूद थी, रियासत की प्रोटेक्शन कुछ भी। रियासत तो बगैर लोगों के एग्जिस्ट ही नहीं करती। वाहिद इलाज ये है कि आज भी मौजूदा हुकूमत कह लें, आर्मी के अंडर पाकिस्तान रहा तब कहें, आर्मी के लाए हुए सियासतदानों के अंडर पाकिस्तान रहा तब कहें, और ये आर्मी के अंडर लाए हुए और आर्मी की पॉलिटिक्स में इंटरवेंशन कोई पुरानी नहीं है, इट वाज जस्ट सून इवन पार्टीशन के दौर में भी थी। बात यह है कि हमें अवाम को पहला मकाम देना पड़ेगा, द पीपल, और हमें कौम बनानी पड़ेगी। वी हैव टू बिल्ड नेशन। हमने आज तक कभी कौम की तशकील की नहीं, हमारा ये मकसद रहा है, और ना ही अभी हमने कभी तशकील की नहीं है कौम की। माजरत के साथ मैं आपको बताऊं,
ठीक,
कोई भी पाकिस्तानी अपने आप,
लेकिन खामियों पे, लूप होल्स पे तो हमने बहुत बात कर ली। हम अब आपसे, मेरा क्वेश्चन ये था डॉक्टर उमर अब्बासी साहब के, किस तरह एक कामयाब कौम, एक कामयाब स्टेट के तौर पर किस तरह आगे बढ़ा जा सकता है, क्या करना होगा?
जी ऐसे बढ़ा जा सकता है कि जो हमने इल्यूजन्स क्रिएट किए हुए ना, इल्यूजन्स, इसको ख्यालात कहें आप, इल्यूजन्स की मुझे उर्दू नहीं मालूम, ये जो हमने बहुत सारे इल्यूजन्स
क्रिएट किए
हुए, यूं कहें कि खाम ख्याली हमने बहुत सारी खाम ख्यालियां हमने तश्कील की हुई हैं जिसका हम प्रचार करते हैं किताबों में, मीडिया में, तकरीरों में, इन खाम ख्यालियों से
उसको दुरुस्त करना होगा, बाहर निकलना होगा उससे। डॉक्टर मोहम्मद तकी साहब, टाइम काफी कम है, आप इस सेगमेंट को प्लीज क्विकली वाइंड अप कीजिएगा।
जी गुजारिश यही है कि जो डॉक्टर अब्बासी साहब का तो जो आर्गूमेंट है ये मैं नंबर वन अडॉप्ट करता हूँ, उन्होंने जो कहा उससे बिल्कुल पूरा इत्तेफाक है मुझे। फैजान साहब, डॉक्टर साहब ने जो कहा वो तो उसका हकीकत से ताल्लुक नहीं है, माफी चाहता हूँ। वो कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन ने सोवियत यूनियन को रोका, अब उसमें तो यानी पाकिस्तान की फौज में उस वक्त भी सिंधी जनरल कोई नहीं था, आज भी कोई नहीं है, आज तक हुए ही कोई नहीं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन सोवियत यूनियन से लड़ने नहीं गई, वो अफगान लड़े उनके साथ और अफगानों ने ही रोका, और वो सिविलाइजेशन जो है वो सेंट्रल एशियन सिविलाइजेशन है, और वो इंडस के मगरबी किनारे से आमू दरिया तक चली जाती है, उसका दूर दूर तक पंजाब और सिंध से कोई वास्ता नहीं था। हाँ, पाकिस्तान फौज का जो एक किरदार है और अमरीका का किरदार है वो उसके अंदर एक अलग मामला है। उन्होंने अमरीका की मिसाल दी, अमरीका की सबसे बड़ी मिसाल देना वो भूल गए। अमरीका का आइन जो है वो 1789 में बना और उसके बाद कभी नहीं तोड़ा गया। उसके अंदर 27 अमेंडमेंट्स हुए हैं, आइन अपनी जगह पे मौजूद है, इदारे अपनी जगह पे काम कर रहे हैं। जिस फौजी को अगर अमेरिका की हुक्मरानी का शौक हुआ अगर कभी, तो उसने वर्दी उतारी, जाकर इलेक्शन लड़ा और सदर बना। आइजन हावर है, दूसरे इस तरह लोग जो है वो गुजरे पुराने वक्तों में और भी थे। तो ये काम अगर पाकिस्तान में हो गया होता तो बहुत फायदा होता। अयूब खान ने एक मजमून 1960 में फॉरन अफेयर्स में लिखा था जिसमें एक इस्लामिक पाकिस्तानी आइडेंटिटी की बात की थी। उसी जमाने में एक मजमून जो हुसैन शहीद सोहरावर्दी मरहूम ने लिखा था उसी मैगजीन में जिसमें कि पाकिस्तानी आइडेंटिटी की बात की थी। उस आइडेंटिटी को अगर चलने दिया जाता, उस आइडेंटिटी को अगर कायम रखा जाता और आईनी और कानूनी तरीके से मुल्क को एक जमहूरी तरीके से चलाया जाता तो 23 साल के अंदर मुल्क टूटता नहीं, पहली बात तो ये। दूसरा ये कि जो जो दिफा के नाम पर जो कुछ बटोरा गया है वो डेवलपमेंट की तरफ जाता। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से मैं पुरअमीर हूँ, उनको शायद ये मालूम नहीं कि आज के दिन एट दिस मोमेंट पाकिस्तान का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो भूटान से भी पीछे है, नेपाल से भी पीछे है, 3.5-3.75% के ऊपर चल रहा है। 220 मिलियन बच्चा पाकिस्तानी जो है वो स्कूल से बाहर है। ये मेरे ख्याल में सिर्फ नाइजीरिया से जरा सा बेहतर है। एक अबाउट 1/5 ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो ऑफिशियल पाकिस्तानी सरकारी पॉवर्टी लाइन से नीचे रहती है। 18 बिलियन का कर्जा जो है मांग तांग के दुनिया जहां से लिया और कल वजीर खारजा खड़े होकर फरमा गए पाकिस्तान के कि हम दुनिया में यक्का और तन्हा रह गए हैं। तो वो ऐसे काम न करें। पहली बात यह कि खुद से सच बोलें, कौन से सच बोलें, जो कुछ 72 साल में करते आए हैं पहले तो उठ के किसी को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, चाहे वो फौजी हो या उनके कोलैबोरेटिंग सियासतदान। लेकिन नजर नहीं आता कि ऐसा हो रहा है। आपने इमरान खान साहब की तस्वीर आज आजाद कश्मीर की असेंबली में देखी।
बिल्कुल, वो हमारा अगला सेगमेंट है, उस पे बात करेंगे। लेकिन डॉक्टर तकी साहब वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, मुझे ये बताएं, बस एक मिनट में वाइंड अप कीजिएगा प्लीज।
वे फॉरवर्ड जो है वो पाकिस्तान का वफाकी स्ट्रक्चर जो पाकिस्तान के आईन के असास के ऊपर चले, कौमों को कौमों के हुकूक दें, लोगों को लोगों के हुकूक दें, फौज जो है वो अगर सरहद के पास रहे और अपनी बैरकों वगैरह में रहे तो लोगों को ठीक लगेगी। लेकिन अगर इसी तरह चलते रहेंगे तो फिर ये मामला अंग्रेजी का लफ्ज है कि दे विल जस्ट प्लॉड अलोंग द सेम वे, इसी तरह चलता रहेगा।
जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद तकी साहब, प्रोफेसर फैजानुल हक साहब, डॉक्टर उमर अब्बासी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और सामीन प्रोग्राम को आगे हम बढ़ाना चाहेंगे। हमें यहाँ अमेरिका में मौजूद मुकीम पाकिस्तानी सफारत खाने से बराह रास्त हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी यूसुफ चौधरी साहब ने, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन पहले हम लेते हैं एक मुख्तसर सी ब्रेक। ब्रेक
उससे भी हमें जो इन्फॉर्मेशन है ज्यादा खौफनाक प्रोग्राम बनाया हुआ है।
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप, जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तियाब है। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
जी सामीन, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम जहां रंग। मैं हूं आपकी मेज़बान शहनाज नफीस। इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं अजफर इमाम और इंजीनियर नुशवान काली। और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है यहां वाशिंगटन डीसी में पाकिस्तानी सफारत खाने से सीनियर सहाफ़ी यूसुफ चौधरी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब।
जी
यूसुफ चौधरी साहब, आज पाकिस्तान भर में और पाकिस्तान से बाहर जो पाकिस्तानी मुकीम हैं मुख्तलिफ ममालिक में, उन्होंने पाकिस्तान का जो योम आज़ादी है वो मनाया। ये बताइएगा कि यहाँ आज क्या एक्टिविटीज़ जो है वो हुई हैं पाकिस्तानी सफारत खाने में।
जी पाकिस्तानी सफारत खाने में हर साल की तरह आज भी जो योम आज़ादी की तकरीब जो है बड़ी पुरवकार तरीके से मनाई गई, जिसमें बहुत से पाकिस्तानी अमेरिकन ने शिरकत की और पाकिस्तानी सफीर ने हैं परचम कुशाई की है। उसके अलावा पाकिस्तान का कौमी तराना और जिस तरह फेस्टिविटीज़ होती हैं हमारी, उसके बाद खिताब और सफीर साहब ने और DCM ने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान प्रेसिडेंट का मैसेज पढ़ कर सुनाया। उनका कहना यही था कि खासतौर पर इजारे यकजहती कश्मीर इस मौके पर करने का उन्होंने कहा कि तमाम पाकिस्तानियों से उन्होंने दरख्वास्त की कि इस साल जो 14 अगस्त है वो डेडिकेट करें योम यकजहती कश्मीर, कश्मीरियों पर जो मुजालिम हो रहे हैं भारत की जानिब से। उस सिलसिले में तो एक बहुत ही पुरवकार तकरीब थी हर साल की तरह। और इसके अलावा जो पाकिस्तान के दूसरे कौंसलेट्स हैं उनमें भी आज इसी तरह की तकरीबात जारी हैं। जी
ओके, ये बताइएगा यूसुफ चौधरी साहब के यहाँ पे मुकीम जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो इस दिन को किस तरह मनाते हैं। कहा जा रहा है कि 17 को एक बहुत बड़ा इस हवाले से इवेंट भी होने वाला है।
जी पाकिस्तानी देखिए दुनिया में कहीं भी हों, पाकिस्तानी जब उनका योम आज़ादी का दिन आता है, खासतौर से 14 अगस्त का दिन आता है, वही वलवला सालों से मुख्तलिफ पाकिस्तानी जो हैं मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तानी रह रहे हैं, मगर जब उनका कौमी दिन आता है उस पर वही जज्बा और वही वलवला जिस तरह पाकिस्तान में होता है उसी तरीके से उसको मनाया जाता है। इस साल मैं ये बता चलूं कि 17 अगस्त को जो यहाँ पे वॉशिंगटन में अमेरिका का सबसे बड़ा जश्न आजादी का प्रोग्राम होता है उससे भी डेडिकेट कर दिया गया है कश्मीरियों के लिए और इजहार यकजहती कश्मीर और कश्मीरियों की जो फ्रीडम मूवमेंट है जो स्ट्रगल है एक्चुअली उसके उस पे ये उसको डेडिकेट कर दिया गया है। तो पाकिस्तानी जहां भी हों अपने इस दिन को बहुत ही वलवले जोश और कश्मीर से इजहार यकजहती के साथ ही मना रहे हैं और मनाते रहते हैं।
ठीक, बहुत शुक्रिया यूसुफ चौधरी साहब आपका, थैंक यू सो मच। और सामीन प्रोग्राम को आगे हम बढ़ाएंगे और शुरू में जिस तरह हमने कहा कि पाकिस्तान के योम आज़ादी के मौके पर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने पाकिस्तान के जो का जो ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर है वहाँ की जो असम्बली है उससे ख़िताब किया, ख़िताब में उन्होंने क्या कहा उस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले हमें कहा जा रहा है हमने एक मुख्तसर सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आकर प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे।
जब रेडियो हो दूर और ख़बरें हों अहम तो आइए हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urduvoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शह सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urduvoa.com पर। अमरीका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बा कार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। पाकिस्तान में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक urduvoa.com पर बराह राहत सुनिए। हमारे ताज़ा तरीन ब्रॉडकास्ट बुलेटिन के लिए दिन में कई दफा आइए, दिन हो या रात जब दिल चाहे इस पते को याद रखिए www.urduvoa.com।
जी सामीन वेलकम बैक, प्रोग्राम जहां रंग में मैं हूं आपकी मेज़बान शहनाज नफीस और प्रोड्यूसर हैं असफर इमाम। और प्रोग्राम के इस हिस्से में इस वक्त हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान से दिफाई तज़ियाकार रिटायर ब्रिगेडियर इमरान मलिक साहब ने, उनको खुशामदीद कहते हैं। और हमें ज्वाइन किया है दिल्ली से सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार डॉक्टर मुनीश कुमार साहब ने। और हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ अमेरिका में polytech.com के चीफ एनालिस्ट आरिफ अंसार साहब को भी लाइन पे लें। दोनों मेहमानों को खुशामदीद। और ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले हम आपको एक साउंड बाइट सुनवाना चाहेंगे। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर जो है वहाँ पे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने जो ख़िताब किया है उसका एक मुख्तसर साउंड बाइट आपसे लेना चाहेंगे, फिर आपसे सवालात का जो सिलसिला है वो शुरू होगा। जी,
उससे भी हमें जो इन्फॉर्मेशन है ज्यादा खौफनाक प्रोग्राम बनाया हुआ है। दुनिया की नजर उठाने से ये जो ये करने जा रहे हैं कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में, उसकी नजर उठाने से इन्होंने आजाद कश्मीर में एक्शन लेना है। इसके लिए मैं नरेंद्र मोदी को यहां से आज पैगाम देता हूं कि आप एक्शन लें। आपकी ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा।
जी सामीन, ये थे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब। और ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह आपने कहा वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो है वो ये कह रहे थे कि भारत जो है उनके बकौल वो पाकिस्तानी कश्मीर में कार्रवाई का मंसूबा रखता है, और ये कि पाकिस्तान अगर भारत कोई ऐसी कार्रवाई करता है तो पाकिस्तान ईंट का जवाब जो है वो पत्थर से देगा। पहला तो आपने साउंड बाइट भी उनको सुना, मुझे ये बताइएगा कि क्या ये कोई इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर वज़ीर आज़म साहब ये कह रहे हैं कि भारत कोई कार्रवाई कर सकता है, या फिर उनका ये अपना पर्सनल वो था, ज़ाती उनका ख्याल है?
ये पर्सनल ख्याल भी हो सकते हैं, मगर डेफिनेटली अगर उन्होंने इतनी बड़ी बात की है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन और वेरी रिस्पॉन्सिबल अपॉइंटमेंट है ये, और वो ऐसे खाम खास वो कोई ऐसे स्टेटमेंट नहीं बना सकते। डेफिनेटली इनके पास की इंटेलिजेंस रिपोर्ट होंगी और जिसके बाद ही उन्होंने ये बात की होगी। दूसरा, आज पाकिस्तान के मीडिया में एक खबर ये भी चल रही है कि हिंदुस्तान है वो एक पर्स फ्लैग ऑपरेशन करने की तैयारी कर रहे हैं कि उन्हें पाकिस्तान की चेक पोस्ट का एक मॉडल बनाया है, वहाँ पे इंडियन हेल्थ स्टेट के अंदर उस पर पाकिस्तान ने झंडा भी लगाया है, और इसके ऊपर फिर इंडियन फोर्सेज एक मॉक अटैक करेंगे, और ये बताया जाएगा कि पाकिस्तान की या इंडियन हेल्थ कश्मीर में पाकिस्तान के आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में
उन्होंने इंडियन फोर्सेज ने एक सर्जिकल स्ट्राइक किया या लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करके पाकिस्तान की चेक पोस्ट से तबाह किया है। तो इस किस्म की खबरें चल गई हैं। सर, अभी हमें जो असल बात की तरफ आना चाहिए वो ये है कि अभी इस वक्त इतनी वॉलेटाइल सिचुएशन है लाइन ऑफ कंट्रोल की दोनों तरफ, तो इस किस्म के जो बयान है वो दोनों तरफ से चल रहे हैं कि ये मामला तो ऐसे होंगे ही। और आप ये देखिए कि ये दुनिया का सबसे सेंसिटिव एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, क्योंकि बुरी तरह से डिस्टेबलाइज हो चुका है अभी इस वक्त। और इस डिस्टेबलाइज सिचुएशन के अंदर जाहिर बात है कि दोनों साइड जो है, पाकिस्तान भी और इंडिया भी, वो अपनी अपनी पोजिशन को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं। कोई भी खासतौर पर पाकिस्तान बिल्कुल भी कोई अपनी वीकनेस शो नहीं करना चाह रहा। और मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो स्टेटमेंट है वो यही है कि एक तो वो दुनिया को ये बता दें कि यहाँ पे क्या हो सकता है, कि लाइन ऑफ कंट्रोल के क्रॉस एक्टिविटी हो सकती है एक। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान तैयार है और वो अपना दिफा सकता है और अपना वो दिफा करेगा। और तीसरा ये है कि हो सकता है कि पाकिस्तान की एक वार्निंग के बाद वो इस किस्म की क्रॉस लाइन ऑफ कंट्रोल एक्टिविटी को प्रियम कर दें और वो हिंदुस्तान बाज आ जाए ऐसी कार्रवाई करने से। तो इससे बहुत ही वॉलेटाइल, बहुत ही इवॉल्विंग सिचुएशन है। और इस वक्त तक बिल्कुल इसको फॉग ऑफ वॉर भी कहते हैं कि जिससे बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है इस सिचुएशन में, तो ऐसी सिचुएशन है अभी। हमें इसको इस तरह से देखना चाहिए कि दोनों साइड जो है वो अपने अपनी पोजिशन तैयार किए हुए हैं, अपनी तरह से हमें स्ट्रॉन्गर पोजिशन ऑफ निगोशिएशन में आने सिखाना चाह रहे हैं और एक एडवांटेजियस पोजिशन में तैयार करना चाह रहे हैं। तो अभी तो ये सिचुएशन जो है ये वो हो रही है दोनों साइड की तरफ से, खासतौर पर पाकिस्तान की तरफ।
ओके ब्रिगेडियर साहब, मैं वापस आपकी जानिब आना चाहूंगी, लेकिन मीन वाइल प्लीज अगर आप अपनी पोजीशन चेंज कर दें, मुझे सिग्नल्स का प्रॉब्लम लग रहा है, आवाज़ आपकी कुछ कट के आ रही है हम तक। डॉक्टर मुनीश कुमार जी, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद। और जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि कुछ दिनों से पाकिस्तान में ये खबरें जो हैं गर्दिश कर रही है कि भारत जो है वो अपने ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की आइनी हैसियत तब्दील करने के बाद जो पाकिस्तानी के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर है वहाँ पर कार्रवाई कर सकता है। आज यही बात जो है वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी अपने खिताब में कही कि भारत उनके बकौल पाकिस्तानी कश्मीर में कार्रवाई का मंसूबा रखता है। क्या इस हवाले से भारत के अंदर भी कुछ सुनाई देता है?
देखिए, मुझे लग रहा है कि अभी बहुत ही इमोटिव जो है सिचुएशन है, हर लोग हर किस्म की बात कर रहे हैं। इमरान साहब के भाषण को हमने सुना, वो बेसिकली अपने डोमेस्टिक कॉज को जो है वो समझा रहे थे कि कितनी खराब है पाकिस्तान की इकोनॉमी और पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन भी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स अभी जो है सामने दिख रही है कि जिनको जो चैलेंजेस हैं। और ऐसे में कोई भी लीडर जो है अपने देश में जो है वो इस तरह अपनी साख बचाने के लिए वो इस तरह के दलीलें देगा, इस तरह के भाषण देगा, इट इज क्वाइट नॉर्मल एंड नेचुरल। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि देखिए, अभी तो हिंदुस्तान ने एक पहल ले ली, सरकार ने जो है एक फैसला ले लिया कि जो पीओके ये जो इंडियन कश्मीर जो है उसमें जो है उसको पूरी तरीके से इंटीग्रेट कर लिया। और इस फैसले के साथ जो है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, एक दो पार्टीज को छोड़ करके, लेकिन पब्लिक जो है वो गवर्नमेंट के फैसले के साथ है। अब रही बात कि भाई जो पीओके को लेकर के जो बात आज इमरान खान साहब ने कही, ये इनका हालांकि इधर से कोई अभी कोई इस तरह का कोई बयान नहीं आया है, ना ही कोई इस तरह के मूव हो रहे हैं, लेकिन जो कश्मीर के अंदर में जो सिक्योरिटी फोर्सेस जो लगाया गया है उसका सिर्फ इसलिए लगाया गया है कि हिंदुस्तान की तरफ, हिंदुस्तान को ये लगता है कि इसका रिटेलिएशन पाकिस्तान की तरफ से हो सकता है, क्या टेररिस्ट ग्रुप्स जो पाकिस्तान के अंदर है वो रिएक्ट कर सकते हैं, कश्मीर में जो है स्थिति खराब हो सकती है, कोई अटैक हो सकता है, या बहुत सारे जो लोग जो है जो पाकिस्तान के अंदर में जो दहशतगर्द है उन्हें कश्मीर में जो है भेजा जा सकता है। तो ये बेसिकली ये दोनों कंट्रीज जो है अलग अलग पोजिशन पे जो है वो पड़ी है। लेकिन अब है क्या कि जो जिस तरह से दिन बीतता जा रहा है, पाकिस्तान के अपने जो प्रॉब्लम जो है उस वजह से उनके ऑप्शंस जो है बिल्कुल ही कम होते चले जा रहे हैं। और जिस तरह से वर्ल्ड पूरी दुनिया ने रिएक्ट किया है, तो मुझे लगता है कि ये मसला जो है बिल्कुल एक ठंडा सा बयानबाजी के बाद जो है
کچھ دنوں کے بعد یہ بالکل یہ ٹھنڈا پڑ جائے گا
جی. لیکن ابھی تو یہ دیکھنا ہے کیونکہ پاکستان نے ڈاکٹر منیش کمار صاحب اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا جو ہنگامی اجلاس ہے وہ بلانے کی انہوں نے باضابطہ درخواست جو ہے آج وہ کر دی ہے, تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے یہ ابھی دیکھنا ہوگا. بریگیڈیئر صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہوں, جی 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 پلیز جی جی
میں ایک بات کہہ دوں جی, یہ دیکھیے پاکستان کو اس کے لیے کم سے کم لا اس کی جو ہے اس کی سہمتی چاہیے ہوگی, کیا وہ لا کنٹریز ابھی تیار ہیں؟ نہیں ہے. دوسری بات میں کہہ دوں کہ یو این کے اندر میں یا اس طرح کے سیکورٹی کونسل میں آپ کو یاد ہوگا فلسطین کو لے کر کے کتنے سارے ریزولوشن پاس ہوئے ہیں, کوئی اپلائی ہوئے ہیں کیا؟ کبھی کوئی اس کے اوپر کوئی اثر ہوا ہے کیا؟
بہت ہی اہم پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے. اس پہ آگے جا کے عارف انصار صاحب جو ہیں امریکن اینالسٹ ان کے ویوز ہم لینا چاہیں گے. لیکن عمران ملک صاحب آپ سے ایک اور کوسچن, یہ کہ پاکستانی جو وزیراعظم ہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان ان کا جواب پتھر سے دے گا, کچھ اسی طرح کی بات پاکستانی فوج کے جو سربراہ ہیں انہوں نے بھی کی تھی کہ وہ آخری حد تک جائیں گے مسئلہ کشمیر کا جو تنازع ہے اگر وہ زیادہ بڑھتا ہے, اس سے مراد ان کا کیا ہے؟
اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ بھارت کے جو لیٹرل سٹیپ کی وجہ سے قدم کی طرف سے کی وجہ سے جو دنیا کا سب سے سینسیٹیو نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے وہ تقریباً کیا مکمل طور پہ ڈسٹیبلائز ہے اور یہ سچویشن کہیں کسی بھی طرف روک لے سکتی ہے. اگر کوئی لائن آف کنٹرول کے اکراس کوئی بھی کاروائی ہوئی تو اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جائے گا اور بہت جلد یہ ہے کہ یہی فیئر اپ جو ہے یہ نیوکلیئر ڈائمینشن تک جا سکتا ہے. تو اس بات سے وہ واضح طور پر سب کو وارن کر رہے ہیں کہ اس سچویشن کو اس حد تک نہیں جانے دینا چاہیے, بلکہ جو جینوئن سچویشن تھی سارے ایریا کے اندر اس کو واپس ریسٹور کرنا چاہیے. آپ نے بات کی اسمین کی اور ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جی ان کے پاس وہ ممبرس کی وہ سپورٹ نہیں ہوگی, چلے اگر ہم ڈاکٹر صاحب کی بات مان بھی لیں اس کا کیا مطلب ہے کہ یو این ریزولوشن کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی؟ کیا آئندہ طاقت کے بل بوتے کے اوپر تمام یو این ریزولوشن جو ہیں ان کو پامال کر دیا جائے گا؟ کیا اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ آئندہ کوئی بھی یو این کی جو ریزولوشن ہے اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہوگی, کوئی وائبلٹی نہیں ہوگی؟ اگر انجسٹس پھیلے گی تو یو این کی ویلو کیا ہے, یو این کی ضرورت کیا پڑا ہے؟
رائٹ,
اگر 1947-48 میں یو این ریزولوشن ہے اور ابھی تک اس کے یو این کے چارٹر میں ریزولوشن میں کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ ایریا ہے, اس کو کوئی کیسے یونیورسلی آپ کر سکتے ہیں ریپورٹ کر سکتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر یو این کی ریزولوشن کو آپ امپلیمنٹ نہیں کرتے تو یو این
اس کی تو اہمیت ہی نہیں رہ جاتی. ٹھیک بریگیڈیئر صاحب, صحیح اس موڈ پہ عارف انصار صاحب جو ہیں ان کو ہم لانا چاہیں گے. بریگیڈیئر صاحب معذرت کے ساتھ, عارف انصار صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس جو ہے وہ بلانے کی باضابطہ درخواست کر دی ہے, سلامتی کونسل کے جو پانچ مستقل ممبرز ہیں ان کی آپ کی نظر میں کیا پوزیشن ہوگی؟ پاکستان کو اس پلیٹ فارم پہ کتنی حمایت حاصل ہو سکتی ہے؟
جی, اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یو این کی اپنی کریڈیبلٹی ابھی داؤ پہ ہے. ظاہری بات ہے کہ یو این کی ریزولوشنز ہی ہیں جس کے تحت اس کانفلکٹ کو مینیج کیا جا رہا تھا اور جو بھی اس کا فیوچر تھا. تو ظاہری بات ہے کہ ٹھیک ہے انڈیویجول کنٹریز کی جو پوزیشن ہوں گی وہ تو ہوں گی, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جس طرح ہم دنیا کے اور کانفلکٹ میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو فائیو ممبرز ہیں وہ اپنے انٹرسٹ کے مطابق جو ہے ووٹ دیتے ہیں یا ایشوز کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. چائنا نے تو کھل کے کہہ دیا ہوا ہے اور کیونکہ لداخ کی وجہ سے ان کا اپنا بھی اسٹیک ہے تو وہ پوزیشن تو واضح ہی ہے. امریکہ کی جو پوزیشن جو میڈیا میں جتنی آئی ہے انہوں نے بھی کہا کہ وہ اس کی ان کی جو پوزیشن ماضی میں تھی اس پہ یو این سے مطابقت میں وہ ابھی بھی قائم ہے اور وہ چینج نہیں ہوئی. تو جب وہاں پہ آئے گی بات تو میرا خیال ہے کہ اس چیز میں کوئی ابہام نہیں ہوگا. کوئی بھی ممبر یہ تو نہیں چاہتا کہ یو این کی جو اپنی ریزولوشن اس میں ہے اس کو فالو نہ کیا جائے یا اس کو فورس کے ساتھ ڈیل کیا جائے. اور اس وقت جو اہم موضوع ہے جو پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ اس کی जो डिप्लोमेटिक या पीसफुल जो नेगोशिएटिव सोल्यूशन है वो वाला रास्ता अपनाना है कि या बाय फोर्स या मिलिटरिस्टिक अप्रोच करनी है, तो उसमें तो कोई मेरा ख्याल है कि कंफ्यूजन नहीं है. लेकिन ये कि हमने बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स में जो रिसेंट देखा है कि एक स्टेलमेट आ जाता है यूएन के अंदर
जी. लेकिन डॉक्टर मुनीश कुमार साहब ने जो बात की है कि मैक्सिमम कामयाबी जो है वो जाहिर है क्या हो सकती है, वो यही होगी कि पाकिस्तान के हक में करारदाद जो है वो मंजूर हो जाएगी. उसके बाद फिर क्या होगा?
उसके बाद जो मामला ग्राउंड पे है वो रिजॉल्व होंगे. ओके, लॉकडाउन तो है लेकिन जब इंडिया ने वो हटाए तो हकायक सामने आने शुरू.
बहुत शुक्रिया आरिफ अंसार साहब और बाकी मेहमानों का भी शुक्रिया. इसके साथ ही शहनाज नफीस को प्रोग्राम खत्म करने की इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज.
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते.
आवाज से 25 गुना जायद रफ्तार से चलने वाले मिसाइल की नई टेक्नोलॉजी जिसमें हाइपरसोनिक सिस्टम भी शामिल है दुनिया भर में हथियारों के नए दौड़ का बायस बन रही है. एक नई रिपोर्ट में मुहक्किकीन का कहना है कि अमेरिका और रूस के दरमियान गुज़िश्ता माह दरमियानी फासले तक मार करने वाले एटमी मिसाइल मुआहदे का खात्मा हथियारों की दौड़ में तेजी की ताज़ा मिसाल है. जरूरत इस अमर की है कि सलामती के आलमी ढांचे पर इस दबाव के सदबाब के लिए फौरी नए मुआहदे किए जाएं. रूस ने गुज़िश्ता वर्ष दिसंबर में एवनगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल निज़ाम की जाँच की थी. मास्को का दावा है कि इस मिसाइल ने दफाई निजाम से बचते हुए 11,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर किया. ये हाइपरसोनिक ग्लेड व्हीकल सिस्टम एटमी और रवायती हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है. रूस का कहना है कि एवन गार्डन की तसलसल से पैदावार शुरू हो चुकी है. यूरोपियन लीडरशिप नेटवर्क की केतरा जीना कोबियाक कहती हैं कि अमरीका, चीन और ऑस्ट्रेलिया भी अपना ऐसा ही निजाम कायम कर रहे हैं. वो कहती हैं,
These are going to outmatch existing missile systems by speed and by maneuverability and are going to potentially be able to bypass any existing.
वो कह रही हैं कि वो अपने मौजूदा मिसाइल निजाम को रफ्तार तेज करके और मुख्तलिफ तरामीम के जरिए इसी तर्ज पर ढाल रहे हैं और आने वाले बरसों में वो मौजूदा एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बाईपास करने के काबिल हो जाएंगे. हम साथ ही एंटी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की इजाद भी देख रहे हैं जो इस मिसाइल निजाम में शामिल है. रवायती और एटमी दोनों तरह के हथियार ले जाने वाले इन दोहरी सलाहियतों के हामिल मिसाइल निजाम की तैयारी ने एक नया एबहाम भी पैदा किया है जिससे गलत तखमीना लगाए जाने का खदशा बढ़ गया है. यूरोपियन लीडरशिप नेटवर्क की कैथरीन जीना कोबियाक कहती हैं,
crisis situation the military is acting under very heavy pressure and not knowing what kind of missile is flying into them
wo keh rahi hai ki bohran ki surat mein fauj sakht dabav mein karwai karti hai use nahi malum hota ki is par kis qisam ke missile parvaz kar rahe hain mumkin hai ya to wo samjhe ki surat-haal bahut badtareen hai ya phir wo galat andaaza laga le jiske natije mein na danestigi mein surat-haal mazid gambhir ho sakti hai. इस माह के अवायल में रूस में नाकाम मिसाइल तजुर्बे में कम से कम 5 अफराद हलाक हुए थे. साथ ही मुकामी सतह पर ताबकारी में इजाफा हुआ था और आलमी बिरादरी में मास्को के एटमी मिसाइल की तैयारी पर तशवीश पैदा हुई थी. कोबियाक कहती हैं कि मिसाइल के फैलाव के इस माहौल में सलामती के आलमी जिम्मेदारान सख्त दबाव में हैं और मिसाइल टेक्नोलॉजी की बढ़ती हुई तरक्की से इनके दबाव में इजाफा हो रहा है. कैथरीन जीना कोबियाक कहती हैं,
The already very complex security calculus is going to be even harder. So an unbound missile proliferation will aggravate interstate competition.
وہ کہہ رہی ہیں کہ سلامتی کی پیچیدہ صورتحال مزید سخت ہو رہی ہے. لامحدود میزائل پھیلاؤ سے ملکوں کے درمیان ہتھیاروں کی نئی دوڑ شروع ہو جائے گی. عالمی اور علاقائی سلامتی کے استحکام پر لاگت میں اضافہ ہوگا اور فوجی کارروائی مزید خطرناک اور مہنگی ہو جائے گی. رپورٹ میں زور دیا گیا ہے کہ عالمی برادری سیاسی ایجنڈے میں میزائل کو ترجیح دے اور نئی میزائل ٹیکنالوجی کے سدباب کے لیے میزائل کے عدم پھیلاؤ معاہدے کو مستحکم کرے اور مذاکرات کے ذریعے نئے معاہدے کیے جائیں. اسفر امام, اردو وی او اے, واشنگٹن.
صدائے جہاں, وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے. ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں, پوسٹ باکس 1399, اسلام آباد.
اب آپ کے ہاتھ میں.
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔ ہیلو
ہیلو ہیلو،
وائس آف امریکہ، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟
جی میں نے بات کرنی ہے، جی گانے کی فرمائش کرنی ہے جی۔
ہیلو، آواز آ رہی ہے؟
ہیلو چیٹ بسٹرز، ایک گیت کی فرمائش ہے۔